हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ध्रुव और तारा की हल्दी की रस्म हो रही थी। इस बीच मेहर वहाँ पहुँचे। जिस तरह से ध्रुव और मेहर की शादी टूटी थी और उसके बाद ध्रुव ने बिना सफाई दिए तारा से शादी करने जा रहा था, उसके बाद मेहर काफ़ी आग बगुला होकर वहाँ पहुँची। उसके तेवर से साफ जाहिर था वो इन सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ध्रुव मेहर को अकेले में लेकर गया और उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। वहीं तारा का मूड भी उखड़ा हुआ था। पहले ध्रुव की बेरुखी उसे परेशान कर रही थी, तो फिर ध्रुव के मौलिक से अच्छे से बात करने पर तारा और भी गुस्सा हो गई। उस इस वक्त यही लग रहा था कि सब उसके दुश्मन बने हुए हैं। रस्म खत्म होने पर राणा फैमिली एंजॉय कर रही थी। उनसे अलग तारा उतरे हुए चेहरे के साथ आंखों में नमी लिए वहां बैठी थी। इतने में ध्रुव तारा के पास आया। ध्रुव ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, जानना नहीं चाहोगी मैंने मेहर से क्या बात की होगी? बोलते हुए ध्रुव रुका और सिर हिलाकर बोला, नहीं, बात करना कहना गलत होगा। मैंने मेहर को कैसे मनाया होगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तारा ने इरिटेट होकर जवाब दिया। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ध्रुव बोला। तुम्हें हमारी शादी के बारे में अचानक पता चला है तो ये सवाल तो तुम्हारे मन में आया होगा ना कि मैं एक धोखेबाज से शादी क्यों कर रहा हूँ? जिस लड़की को मुझे बुरी मौत देनी चाहिए उसे यूं मेरे डैड और राणा फैमिली से राखों पर क्यों बैठा रही है? मेरे मना करने पर कौन सा तुम रुक जाओगे? चलो बता दो जो बताना है, तारा ने मायूसी से कहा। ध्रुव अगर उसे सब बताने पर जोर दे रहा था तो जाहिर सी बात थी सच जानने के बाद उसे झटका लगना ही था। तारा मन ही मन खुद को एक बड़े झटके के लिए तैयार करने लगी। तभी ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं। वैसे तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी पता है ना, तारा मल्होत्रा, माफिया प्रिंस हो तुम? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उनसे नफरत करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फ़ायदा उठाओगे। तुम चाहे तो पता कर सकते हो, वो एक मामूली से प्रोफेसर हैं। हाँ, मल्होत्रा फैमिली के बाकी लोगों के बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन वो बहुत ईमानदार हैं, तारा ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो अनजाने में मौलिक का पक्ष लेते हुए उसकी तारीफ करने लगी थी। उसके मुंह से मौलिक की तारीफ सुनकर ध्रुव के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो बोला, मैंने कब कहा कि वो एक बेईमान इंसान है या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे काम किए हैं? किस्मत आपको कहीं भी ले जा सकती है, आप खुद को ही देख लो। कहाँ तुम एक सीक्रेट एजेंट बनकर माफिया की दुनिया को ख़त्म करना चाहती थी और किसे पता था कि उसी दुनिया का तुम एक ज़रूरी हिस्सा हो? तुम्हें अपनी पूरी हिस्ट्री पता नहीं है। फ़िलहाल इतना समझ लो कि तुम वो चाबी हो जो मुझे पूरी दुनिया की माफिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने की ताकत देगा। और जिस दिन तुम्हें ये ताकत मिल जाएगी उसी दिन तुम मुझे छोड़कर उससे मेहर रायकन से शादी कर लोगे, यही बताने आए हो ना तुम मुझे? तारा ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। ध्रुव को आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही सब समझ गई थी। आई लाइक स्मार्ट पीपल, पर धोखेबाज लोग पसंद नहीं है मुझे। स्मार्ट और धोखेबाज लोगों का बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, तारा मल्होत्रा, ध्रुव ने तारा की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा। अब ध्रुव को तारा को ये समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो उससे शादी क्यों कर रहा है। हालांकि तारा इस बात से अब तक पूरी तरह अनजान थी कि माफिया किंग की पोजीशन को पाने के लिए क्या किया जाता है, पर एक चीज़ उसे समझ आ रही थी, वो ध्रुव के लिए बहुत कीमती थी और उसके बिना वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता था। तारा ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, मैं धोखेबाज हूँ तो तुम भी सेल्फिश हो ध्रुव राणा, अपने मतलब के लिए अपना बदला और गुस्सा तक भूलने के लिए तैयार हो गए। तारा के इस तरह तंज कसने पर ध्रुव के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। वो तारा को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त उन दोनों की आंखों ही आंखों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। तारा और ध्रुव को इस तरह आई कांटेक्ट करते हुए दूर से अलीशा ने देखा तो उसने जल्दी से इस मोमेंट को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया था। वीर भी उसके पास में ही खड़ा हुआ था। अलीशा ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे सच में लगता है कि ध्रुव जेन्युइनली अपनी शादी से खुश है। देखो ना, इतने लोगों के बीच में भी ये दोनों बिना किसी झिझक के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि ध्रुव की शादी जब मेहर से हो रही थी तब उसकी आंखों में एक अजीब ही खालीपन नजर आता था। उसकी आंखें किसी और को ढूंढती रहती थीं। अब समझ में आया कि इन आंखों में तो तारा बसी हुई थी। अलीशा काफ़ी रोमांटिकली बात कर रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर वीर ने आंखें घुमाई। वीर गहरी सांस लेकर मन ही मन बोला, काश मैं तुम्हें बता देता कि इस वक्त इन दोनों की आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे को मारने की प्यास होगी। खैर, तुम्हें तुम्हारे डिल्यूजन में जीने देता हूँ। वीर के कोई जवाब नहीं देने पर अलीशा ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और चिढ़कर बोली, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम दूसरों की आंखें पढ़ने में काफ़ी माहिर हो। अच्छा, मेरी आंखों में क्या नज़र आता है तुम्हें? वीर ने अचानक कहा और फिर अलीशा को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने कर लिया था। वीर भौहें उठाकर अलीशा की तरफ देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वहीं अलीशा ने एक बार नज़र उठाकर वीर की तरफ देखा। न जाने क्यों उसे वीर से आई कॉन्टैक्ट करते हुए अजीब लग रहा था। अलीशा ने तुरंत वीर को खुद से दूर छटका और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, नींद? व्हाट? वीर ने हैरानी से सिर हिलाया। तुम्हारी आंखों में थकान नजर आ रही है, कब से नहीं सोए हो तुम? अलीशा के साथ में तुम भी शादी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, ये फंक्शन काफी दिनों तक चलने वाले हैं, अगर ऐसे ही तुमने बिना सोए रातें बिताई तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, यू शुड टेक सम रेस्ट, अलीशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया और फिर वहां से दूसरी तरफ चली गई थी। वीर ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अलीशा ने उसकी आंखों में देखा था तब अचानक वो थोड़ा रिस्टलेस हो गई थी। वीर से दूर आकर अलीशा ने अपने दिल पर हाथ रखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ध्रुव और तारा को साथ में इस तरह रोमांटिक होता देखकर मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे वीर को लेकर कुछ फील करूं? इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से अपने लिए एक शांत लाइफ प्लान की थी और यही सोचा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करूंगी, ना कि किसी माफिया से। अलीशा खुद को मन ही मन समझा रही थी कि उसके दिल में वीर को लेकर कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है। इस बीच हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी और सब लोग नहाने के लिए अपने अपने कमरे में थे। तारा को थर्ड फ्लोर पर बने ध्रुव के ठीक बगल वाला कमरा दिया गया था, जो पहले बंधन का हुआ करता था। कमरे में आने के बाद तारा खुद को आईने में देख रही थी। उसके चेहरे पर ध्रुव के नाम की हल्दी लगी हुई थी, लेकिन आंखों में रौनक के बजाय मायूसी छाई हुई थी। तारा कहीं से भी इस शादी से खुश नहीं थी। ऊपर से अब तो उसे ये भी पता चल गया था कि वो माफिया में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रखती है, उसी के चलते ध्रुव उससे शादी कर रहा था।
तारा की आंखों में आंसू थी। उसने खुद को आईने में देखते हुए कड़वाहट भरे लहजे में कहा, तो उसका मकसद पूरा होने के बाद वो मुझे छोड़ देगा और उसे मेहर रायचंद से शादी कर लेगा। देखा जाए तो मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब उसने सच बताया तो मुझे अंदर ही अंदर दर्द क्यों महसूस हुआ? वो तो पहले भी मेरा नहीं होने वाला था, ऊपर से मेरी गलती के बाद अब वो मुझसे नफरत करने लगा है। क्या मुझे मरने का डर सता रहा है इस बात का कि ध्रुव मुझे छोड़ देगा? मिस्टर मल्होत्रा सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मानकर उनके साथ चले जाना चाहिए था। मुझे बाकी सब मंजूर है, लेकिन ये शादी का ड्रामा मुझे नहीं करना है। तुम्हारे लिए शादी जैसा शब्द मायने नहीं रखता होगा ध्रुव राणा, लेकिन मेरे लिए इससे बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। मैं वायु से शादी करने जा रही थी, पहले ही मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है और हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला था, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के कारण मुझसे शादी कर रहे हो और वो पूरा होते ही मुझे मार दोगे ना? ना जाने इस वक्त में तुम मुझे कितनी तकलीफें दोगे ध्रुव। नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बोलते हुए तारा की आंखों से आंसू का कटरा बह गया था और उसने यही डिसाइड किया था कि वो ध्रुव से शादी नहीं करेगी। तारा जानती थी कि इस शादी के फंक्शन को अटेंड करने वाले मेहमानों को शादी तक इसी घर में रुकना था। ऐसे में मौलिक भी यहाँ पर आया हुआ था और जब तक शादी के फंक्शन पूरे नहीं होने वाले थे मौलिक को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब वो अपने स्वार्थ के चलते मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी कर सकता है तो मैं भी अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर सकती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, बस मुझे कुछ भी करके ये पता लगाना होगा आप कहाँ रुके हैं, तारा ने खुद को सख्त करके कहा। एक पल के लिए वो कमज़ोर ज़रूर पड़ गई थी, लेकिन उसकी शख्सियत ऐसी नहीं थी, वो काफ़ी बहादुर लड़की थी। हमेशा सबकी नफ़रत और धोखे झेलने के बाद तारा बहुत मज़बूत हो गई थी। इस वक्त तारा को ये तक ख्याल नहीं था कि उसने अपने चेहरे पर लगी हल्दी नहीं हटाई है, उसे बस कुछ भी करके मौलिक से मिलना था। तारा हड़बड़ाहट में अपने कमरे से बाहर निकली तो वो त्रिशा से टकरा गई थी। त्रिशा ने एक नज़र तारा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। उसकी ये खामोशी देखकर तारा ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली थी। आज तक उसे किसी के नाराज़ होने पर फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन त्रिशा की नाराज़गी उसे तकलीफ़ दे रही थी। त्रिशा ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि तारा ने पीछे से कहा, क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने जानबूझकर आपको हर्ट किया था? त्रिशा तारा की तरफ पलटी और बिना किसी भाव के बोली, ठीक है, मेरे साथ जो भी किया वो अनजाने में हुआ होगा, लेकिन ध्रुव के दिल के साथ खेल रही थी वो तो जानबूझकर था ना। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से उसका प्यार से विश्वास उठ गया है। मैं हमेशा यही सोचा था कि अपने बेटे को उन सब चीज़ों से दूर रखेगी जो युग ने अपनी लाइफ में झेला था। अफसोस की बात है, युग जैसा कोल्ड हार्टेड इमोशनलेस इंसान भी अपनी शादी में खुश था और उसका बेटा जिंदा दिल इंसान होकर भी अपनी शादी में एक डेड बॉडी की तरह कोल्ड नजर आता है। मैं सच में यहाँ से जाने वाली थी। आपको पता है ध्रुव की सच्चाई जानने के बाद मैं अपने फ़र्ज़ को भी पीछे छोड़ दिया था। अपना काम छोड़कर अपना सबसे बड़ा सपना भूलकर मैं उसकी ज़िंदगी से जा रही थी। मेरे लिए भी आसान नहीं था। मुझे एक सीक्रेट मिशन के तहत उसके पास भेजा गया था, फिर भी मैं ध्रुव की अच्छाई देखकर अपने कदम पीछे छोड़ दिए, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसे धोखा दिया? तारा ने अपने गुस्से में काफ़ी कुछ कह दिया था। उसने ध्रुव के सामने अपनी असली पहचान जरूर छुपाई थी, लेकिन ये सच था कि तारा ने पहली बार अगर अपने फ़र्ज से गद्दारी की थी तो उसकी वजह ध्रुव की अच्छाई थी। वो अपना मिशन तक भूल गई थी और उसने अपने सीनियर्स को भी ध्रुव के नज़दीक नहीं पहुंचने दिया। इसकी एकमात्र वजह उसका प्यार था, हालांकि ये तारा के लिए भी आसान नहीं था। तारा और त्रिशा में बहस चल रही थी तभी ध्रुव वहां आया। वो कृष्णा को वहां से ले जाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कृष्णा इस चीटर के साथ बहस कर ही क्यों रही है। ये तो खुद को सही प्रूव ही करेगी। दूसरों के इमोशंस के साथ खेलकर उनका फायदा उठाना इसे अच्छे से आता है। ध्रुव ने तारा को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और वो कृष्णा को वहां से लेकर चला गया था, लेकिन तारा की बातों ने कृष्णा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिलहाल तारा ने उन्हें रोका भी नहीं, क्योंकि उसके लिए मौलिक से मिलना ज्यादा जरूरी था। तारा ने उन्हें वहीं छोड़ा और मौलिक को ढूंढने लगी। तारा ने अपनी नफरत को साइड में रखा और मौलिक को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मौलिक ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वो खुश था कि तारा ने अपनी ईगो को साइड में रखा और उससे मदद मांगने के लिए आई थी। मौलिक भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। पहनने की चाहता था कि तारा मजबूरी के चलते या बिना मन के ध्रुव से शादी करे।